श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और यह पुस्तक हम सबके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपकी निकटता में आकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से पवित्र आत्मा आप हर एक की सहायता करें, ताकि हम आपके वचन को समझकर अपने जीवन में अपना सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हमारी विनती इस समय उन भाई बहनों के लिए है जो निराश और परेशान है, चिंता और तनाव में है, बीमार अवस्था में है। पिताजी हमारी विनती है कि आप उनके साथ हो, उन्हें छू ले, उन्हें चंगाई दे, उन्हें छुटकारा दे, ताकि वे आपकी महानता को समझ सके, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करने पाए। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलिसियाओं के बारे देख रहे हैं। प्रभु यीशु 7 कलिसियाओं को यहुना के द्वारा संदेश भेज रहा है। सबसे पहले है एफिसूस की कलिसिया, जो एक प्रशंसनीय कलिसिया थी, क्योंकि वहां से सुसमाचार अन्य स्थानों में पहुंचा था। परंतु क्योंकि एफिसूस नगर एक व्यभिचारी और अति सांसारिक स्थान था, वहां की कलिसिया सांसारिकता की परीक्षा में पड़ी हुई थी। प्रभु यीशु कहता है कि निसंदेह उन्होंने धीरज धरकर प्रभु यीशु का नाम फैलाने के लिए परिश्रम किया और गलत शिक्षा देने वालों से संबंध नहीं रखा, परंतु उनका पहला सा प्रेम जाता रहा, अतः उन्हें मन फिराने की आवश्यकता थी, अन्यथा प्रभु उन्हें हटा देगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्मुर्ना की कलिसिया के लिए प्रभु यीशु का पत्र। स्मुर्ना की कलिसिया प्रभु यीशु के नाम के लिए शहीद हो रही थी। स्मुर्ना शब्द का अर्थ है गंधरस, जिसका अभिप्राय कष्ट सहने से है। स्मुर्ना नगर का आधुनिक नाम इजमीर है। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब भी आरंभिक कलिसियाओं के अवशेषों का भ्रमण करने उस क्षेत्र में वह जाता है, तब वह इजमीर अर्थात स्मुर्ना नगर में ही रुकता है। वह एक व्यापारिक केंद्र है और वहां के निवासियों का कहना है कि वह नगर शीघ्र ही इस्तांबुल से बड़ा नगर बनेगा। निश्चय ही वह नगर एक वृहद व्यापारिक केंद्र होगा। वहां की जनसंख्या बहुत अधिक है और वर्तमान नगर प्राचीन स्मुर्ना पर ऐसा छाया हुआ है कि आपसे उस युग की नगरी की सुंदर से वंचित हो जाना स्वाभाविक है। वहां का बंदरगाह आज भी एक अति रमणीय स्थल है। सच तो यह है कि अपने समय में वह स्थान एशिया का सर्व सुंदर स्थान था। उसे लोग फूल की उपमा देते थे। वह एशिया का सिरताज कहलाता था। उनका गढ़ वाला नगर पागोस पर्वत पर बसा हुआ है। 2000 ईस्वी पूर्व का प्राचीन हित्ती नगर पात्रोस पर्वत के ढलान पर ही बसा था। यह तो सिकंदर महान था जिसने उस नगर का सौंदर्य निखारा। स्मुर्ना को सिरताज इसलिए कहा जाता था कि उस पर्वतीय नगर के चारों ओर फूल लगे थे और मेहंदी का बाड़ा था, और पात्रोस पर्वत से उतरते हुए पेड़ों की कतार से घिरे हुए मार्ग थे। उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए भव्य इमारतें और सुंदर मंदिर बने हुए थे, जैसे उसके सबसे बड़े देवता जीएस बृहस्पति, प्रजनन की देवी डायना, काम देवता एफ्रोडाइट, पुरुष सौंदर्य का देवता अपोलो और एस्क्लेपियस देवता के मंदिर थे। वहां रंगमंच भी था और संगीत केंद्र भी था। स्मुर्ना संगीत गृह था। वहां एक स्टेडियम था जिसमें यहुना के शिष्य स्मुर्ना के बिशप पॉलीकार्प को सन 155 में जिंदा जला दिया गया था। मसीही साहित्य में स्मुर्ना का अर्थ है कष्ट उठाना, और प्रभु यीशु कहता है कि वह उसके क्लेश और दरिद्रता को जानता है। प्रभु यीशु ने उस पर कोई दोष नहीं लगाया और न ही फिलाडेल्फिया की कलिसिया को दोष दिया। रोचक बात तो यह है कि ये दो नगर ही ऐसे हैं जो आज भी हैं, वहां आज भी विश्वासी हैं, यद्यपि संख्या में बहुत कम हैं। मेरे मित्र ने बताया कि जब वह वहां पर था तब वे चोरी छिपे उनसे भेंट करने के लिए गए थे। तुर्किस्तान में आज भी मसीही जनों को सताया जा रहा है। मेरे प्रियो, इफिसूस प्रेरितों की कलिसिया का प्रतीक है तो स्मुर्ना शहीद कलिसिया का प्रतीक है। यह समय लगभग सन 100 सन से 314 का है, अर्थात यूहन्ना की मृत्यु से लेकर राजा कॉन्स्टेंटाइन के मर्शन अर्थात सहिष्णुता आशा सन 313 तक है, जब विश्वासियों का सताव समाप्त हुआ। स्मुर्ना में ही नहीं वरन संपूर्ण रोमी साम्राज्य में प्रभु यीशु इस कलिसिया के लिए प्रशंसा ही के शब्द कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:8 में लिखा हुआ है, स्मुर्ना के कलिसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। इस पद का संदर्भ 1:17-18 से है, जहां वह कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने ही दर्शन में से वह रूपक चुना जो प्रत्येक कलिसिया के लिए उपयुक्त है। स्मुर्ना के कलिसिया के लिए प्रभु यीशु अपना परिचय देता है, कहता है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। प्रथम और अंतिम का अर्थ है कि इससे पहले न तो कोई था और न ही उसके बाद कोई होगा। सब बातों का अंतिम क्रम उसके हाथ में है। उन विश्वासियों को यह समझना था कि सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में है और उनका सताव परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त उसकी योजना में था। कहता है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। यह शहीदों के लिए एक गंभीर संदेश है। उसकी मृत्यु उन 50,00,000 शहीदों में से थी जो अपनी पहचान बनाती थी, जो उस युग में मारे गए थे। प्रभु यीशु मृत्यु पर विजयी था और सताव में पड़े तथा शहीदों को पूर्ण रूपेण बचा सकता है। वह अब आगे कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:9-10 में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, इस कलिसिया में 7 ऐसे गुण थे जिनके लिए प्रभु यीशु ने उन्हें सराहा था। पहली बात देखते हैं, क्लेश। सबसे पहली बात क्लेश है, परंतु स्मरण रखें कि यह महाक्लेश से संबंधित नहीं है। रोमी सम्राट द्वारा कलिसिया को असहनीय पीड़ा दिया जा रहा था, परंतु यह महाक्लेश नहीं था। निश्चय ही हमारे कष्ट महाक्लेश के तुल्य नहीं है, परंतु स्मुर्ना की कलिसिया के कष्ट अवर्णनीय हैं। वे प्रभु यीशु के लिए कष्ट उठा रहे थे। दूसरी बात है दरिद्रता, अर्थात सांसारिक धन संपत्ता में कमी। आरंभिक कलिसिया में बहुत गरीब लोग थे। यदि कोई धनवान मनुष्य प्रभु यीशु को ग्रहण करता था, तब उसकी धन संपत्ति उससे छीन ली जाती थी। तब वह आगे कहता है, परंतु तू धनी है। यह कलिसिया का आत्मिक धन है। उन्हें सब आत्मिक आशीषें प्राप्त थी। लौदिकिया की कलिसिया से इस कलिसिया की तुलना करके देखें कि यह कैसा अंतर है। लौदिकिया की कलिसिया से वह कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं, यह नहीं जानता कि तू कंगाल और नंगा है। मेरे प्रियो, मैं जब सभाओं में जाता हूं, तब सुनता हूं कि उस कलिसिया में कोई धनवान है तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, परंतु स्मुर्ना की कलिसिया में ऐसा कोई नहीं था कि वह घमंड करे। उस कलिसिया में दास, भगोड़े, मुक्त दास और गरीब लोग थे, और यदि कोई धनवान मनुष्य था तो उसकी धन संपत्ति जब्त कर ली गई थी। तीसरी बात देखते हैं, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर शैतान की सभा हैं, अर्थात स्मुर्ना की कलीसिया में मसीह में विश्वास लाने वाले यहूदी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यहूदी ही थे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय के 6 पद में पौलुस कहता है कि संपूर्ण इसराइल नहीं है, उसका धर्म है जो उसे सच्चा यहूदी बनाता है, उसका धर्म उसकी पहचान है। उस संपूर्ण जाति को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु ने कहा था कि उनका पुरखा एक आरामी मनुष्य था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परंतु स्मुर्ना नगर में सब संस्कृतियों के लोग थे। अनेक यहूदियों ने पुराने नियम का विश्वास त्याग दिया था। वे कहते थे कि वे यहूदी थे, परंतु एक यहूदी जब धर्म का त्याग करता है तब एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वह वास्तव में यहूदी था। जर्मनी में जब यहूदियों को सताया जाता था तब अनेकों ने धर्म त्याग किया था। वर्षों से इसराइलियों में बचे हुए कुछ ही यहूदी थे जो परमेश्वर के सच्चे मानने वाले थे। चौथी बात वह कहता है, उनसे मत डर। यह प्रभु यीशु का प्रोत्साहन है। वह अपने अनुयायियों को क्लेश में ढाड़स बंधाता है। इस पुस्तक में यह दूसरी बार है कि प्रभु यीशु ने विश्वासियों को प्रोत्साहित किया है। इतिहास से प्रकट है कि असंख्य विश्वासी परमेश्वर की स्तुति गाते हुए मृत्यु के मुंह में चले गए थे। पांचवी बात है, शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है। इस भयानक पशु के बारे में हम आगे चल करके देखेंगे। प्रभु यीशु इसी को स्मुर्ना के विश्वासियों के उत्पीड़न का उत्तरदायी ठहराता है। हम तो प्रायः शैतान के साधनों को दुख का कारण ठहराते हैं, परंतु प्रभु यीशु समस्या की जड़ तक जाता है। मेरे प्रियो, मैं यहां अपनी व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे मैं सारांश में परमेश्वर का दंड या ताड़ना कहता हूं, परंतु उस समय जब मैं शारीरिक कष्टों का सामना कर रहा था तब मैं उलझन में पड़ा हुआ था। उस समय अनेकों ने मुझे पत्र लिखे। मेरे विचार में आपके साथ यह घटना शैतान की चाल है, और मैंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि मेरे शारीरिक कष्टों का यही कारण है। छठवीं बात, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 काल ऐसे बीते जब 10 रोमी राजाओं ने उन्हें उत्पीड़ित किया था। मेरे प्रियो, सम्राट नीरो 64 से 68 तक उसने पौलुस का सिर कटवाया था। डोमिशियन 95 से 96 यहोना को काला पानी दिया। ट्रजन 104 से 117 इग्नेशियस जो जिंदा जलाया गया था। मार्कस और रिलियस 161 से 180 तक। पॉलीकार्प शहीद हुआ। सेवेरस 200 से 211 तक। मैक्सिमिनियस 235 से 237 तक। डेसियस 250 से 253 तक। वेलेरियन 257 से 260 तक। ऑरेलियन 270 से 275 तक। डायोक्लेशियन 303 से 313 तक, जो सबसे बुरा राजा था। अब हम सातवीं बात देखते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रह। वे थे भी, वे मसीह के लिए शहीद हो गए थे। प्रभु यीशु उन्हें जीवन का मुकुट देने की प्रतिज्ञा करता है। स्मरण रखें कि वह स्मुर्ना के विश्वासियों से कह रहा है। स्मुर्ना सिरताज नगर था, और रोचक बात तो यह है कि प्रभु यीशु उस सिरताज नगर के विश्वासियों को जीवन का मुकुट देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। फूलों का ताज नहीं था, अन्य नाशमान वस्तु का ताज नहीं, अपितु अनंत ताज। जी हां, प्रभु के नाम में कष्ट उठाने वालों के लिए प्रभु यीशु के पास विशेष मुकुट अर्थात ताज है। मैं अनेक अति उत्तम भक्तों को जानता हूं जिन्हें एक दिन वह मुकुट मिलेगा। मेरे मित्रों, आज कष्टों में आप सोचते होंगे कि प्रभु यीशु आपकी चिंता करता भी है कि नहीं। उसके पास आपके अनंत जीवन के लिए कुछ विशेष उपहार है, आपको वह दिया जाएगा जो और किसी को नहीं दिया जाएगा, केवल आपके समान कष्ट उठाने वालों को ही दिया जाएगा। याकूब की पत्री 1:12 में वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जीवन के मुकुट का अर्थ है कि आप एक दिन वास्तव में जीवन जिएंगे। यह विकलांगों और रोगशाया पर पड़े लोगों के लिए कैसा महिमामय भविष्य है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 2:11 में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या आपने आज उसकी बात सुनी है? क्या वह आपसे बात करता है? कहता है दूसरी मृत्यु। प्रसिद्ध प्रचारक डीएल मूडी कहते थे, जिसका एक बार जन्म हुआ है वह दो बार मरेगा, वह जितना दूर जाएगा परमेश्वर उसको दंड देगा। वह यह भी कहता है वह जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है वह एक ही बार मरेगा। यदि उसके जीवन काल में कलीसिया उठा ली जाएगी तो वह एक बार भी नहीं मरेगा। दूसरी मृत्यु विश्वासियों की नहीं होगी। पहली मृत्यु देह की है और दूसरी मृत्यु आत्मा की है, जिसके कारण मनुष्य सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। विश्वासी के साथ ऐसा नहीं होगा। पिर्गमोन को प्रभु यीशु का पत्र, तुर्किस्तान में इसे पिर्गमोन कहा जाता है, जो वास्तव में सही उच्चारण है। पिर्गमोन की कलीसिया के इतिहास में लगभग सन 314 से 590 तक प्रतिनिधित्व करता रहा है। मैं इस युग को असीमित संसारिकता कहता हूं, क्योंकि इस समय कलीसिया में संसारिकता प्रवेश करने लगी थी और विश्वासी प्रभु यीशु से दूर हो रहे थे। यद्यपि यह पत्र पिर्गमोन के स्थानीय कलीसिया के लिए है, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व है। जी हाँ, पहले हम पिर्गमोन की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। इजमिर एक महानगर है जहाँ हवाई अड्डा है और होटल भी हैं। पर्यटक वहीं ठहरते हैं। वहां से आप 65 मील दक्षिण में जाएं तो इफिसूस पहुंचेंगे और 70 मील उत्तर में जाएं तो पिर्गमोन पहुंचेंगे। ये तीनों नगर राजसी थे और परस्पर विकास की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। स्मरना एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था और इफिसूस राजनीति का महान गढ़ था तथा पिर्गमोन धर्म का मुख्य स्थान था। मेरे प्रियो, पिर्गमोन शहर पिर्गमोन राज्य की राजधानी थी, पर्वतीय नगर आज भी है। वहां प्राचीन नगर एवं मंदिरों के खंडहर आप भी हैं। इतिहासकार प्लिनी ने उसे एशिया का सर्वाधिक यशस्वी नगर कहा है। वह एशिया माइनर का एक सबसे सुंदर स्थान था। इतिहासकार सर विलियम रामसे कहते हैं कि वह एक नगर था जिसे राजसी कहना शोभा देता है। वहां कैसर अगस्तुस के नाम का मंदिर बनाया गया था, अतः वह राजसी नगर कहलाया। रोम में जब ठंड पड़ती थी तब अगस्तुस इसी सुंदर नगर में आकर के रहता था। वहां एक रोग हरण सोता भी था। वह व्यापारिक नगर नहीं था, क्योंकि एक तो वह समुद्री तट से दूर था और दूसरा पूर्व से आने वाले मुख्य मार्गों से दूर था। परंतु वह एक दृढ़ गढ़ वाला नगर था जो बैरियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। पर्वत पर बनाया गया यह नगर कैकस के मैदानी भाग पर छाया हुआ था। मेरे प्रियो, आरंभिक नगर कैकस से बहने वाली दो नदियों के मध्य बसा हुआ था और उस चट्टानी पर्वत को घेरे हुए था। उस स्थान को देखना बड़ा ही प्रभावी है। आप एक पर्वत को खड़ा देखते हैं जिस पर खंडहर दिखाई देते हैं। पिर्गमोन के मंदिर में ही नहीं, एक महान विजातीय पुस्तकालय भी वहां पर था। लगभग 2,00,000 पुस्तकें वहां थी। उस नगर का नाम ही ताड़पत्र से पिरगमोन पड़ा है। क्लियोपात्रा का नाम तो सब ही जानते हैं। उसके प्रेमी मार्क एंथनी ने उसे यह पुस्तकालय उपहार स्वरूप दे दिया था और वह इस पुस्तकालय को मिस्र देश ले गए। इस प्रकार वहां का पुस्तकालय सबसे बड़ा हो गया, जबकि वह वास्तव में पिरगमोन से आया था। मेरे प्रियो, इस्तांबुल में पवित्र सोफिया के स्मारक में आप एक आदमकद फूलदान देखेंगे जो सुंदरता में बेजोड़ है। यह फूलदान पिरगमोन से ही लाया गया था। अंततः बैरियों ने उस नगर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, हम इसके बारे में अगले अध्ययन में देखेंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि पिरगमोन की पृष्ठभूमि आपने देखी है। अगले अध्ययन में हम इस कलीसिया के बारे में देखेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।